ओम शांति। आज का जो दौर चल रहा है, विशेष रूप से हर एक इंसान तनाव से घिरा हुआ है, छोटी छोटी बातों पे चिंता, डिप्रेशन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो आज इस विषय को लेकर हमारे बीच में विशेष रूप से पधारे हैं डॉक्टर सविता बहन जी। हम करतल ध्वनि से आपका स्वागत करते हैं। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आप बाल्यकाल से ही आध्यात्मिकता में बहुत रुचि लेते थे। 1975 में आप ब्रह्मा कुमारी संस्था के संपर्क में आए, राजस्थान यूनिवर्सिटी से मेडिकल स्टडी पूरी करने के पश्चात आप कुछ समय उदयपुर कोटा में मेडिकल प्रैक्टिस की। 1989 में आपने अपने जीवन को संपूर्ण रीति से ईश्वरीय सेवाओं में मानव की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। 1991 से 2000 तक आप ग्लोबल हॉस्पिटल, जो आप सभी देख चुके हैं माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारीज का है, वहां पर आपने मेडिकल ऑफिसर के रूप में सेवाएं दी। 2001 से लेकर 2007 तक आप ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के जो पूर्व चीफ आदरणीय राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि जी थे, उनके आप फैमिली फिजिशियन रहे, उनके अंग संग रहने का आपको गौरव प्राप्त हुआ, बहुत से आपने अनुभव लिए। आपको देश विदेश में ईश्वरीय सेवाओं अर्थ बहुत बार जाना हुआ, खास यूके, यूएसए, यूए में हेल्दी लाइफस्टाइल और रायोगा मेडिटेशन विषयों पर आपने वहां प्रवचन किए और बहुत असंख्य लोगों को आपने प्रेरणा दी। हमारे ब्रह्मा कुमारी संस्था में 19 विंग हैं, जिसमें वुमेन विंग है, तो वुमेन विंग के आप माउंट आबू जो हेड क्वार्टर है उसके कोऑर्डिनेटर हैं। जब भी इंटरनेशनल नेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, आप यहां विशेष अपना योगदान देते हैं। आपके अंदर विशेष कला दूसरों के जीवन को पलटने की, एक प्रेरणा देने की विशेष कला है। आपके प्रिय विषय हैं हैप्पी लिविंग, हेल्दी एंड हैप्पी लिविंग, मेडिटेशन एज मेडिसिन, एंगर मैनेजमेंट, आर्ट एंड साइंस ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग आदि आदि, स्ट्रेस मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट, ये आपके सब प्रिय विषय हैं। और अभी आप हमारे बीच में स्ट्रेस फ्री लिविंग, तनाव मुक्त जीवन, इस विषय पर प्रकाश डालेंगे। और वैसे तो मैं ये समझता हूं कि अभी हम सब का तनाव काफी दूर हो गया है, और परमानेंट दूर हो जाए फिर दोबारा तनाव आए ना, परिस्थितियां पर हम हावी रहें, तो ऐसी कला हम डॉक्टर बहन सविता जी से अभी सीखेंगे। तो ज्यादा समय ना लेता हुआ मैं आदरणीय बहन को सादर आमंत्रित करता हूं कि अब इस विषय पर प्रकाश डालेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। भाई जी कह रहे थे कि आप सबका तनाव तो काफी कम हो गया है, तो हम समझ सकते हैं पिछले 2 दिन से आप ज्ञान सरोवर में हैं, यहाँ के शांत वातावरण में निवास कर रहे हैं, तो सचमुच ऐसा ही महसूस कर रहे होंगे कि इस वक्त तो हम तनाव मुक्त हैं। क्या कहेंगे? लेकिन विषय रखा गया है क्योंकि यहाँ से आप पुनः जब वापस अपने स्थानों पर जाएंगे तो हो सकता है फिर वही परिस्थितियां जब हमारे सामने होंगी तो हमें तनाव होने लगे। हम सभी अपने जीवन में तनाव का अनुभव करते हैं, कोई भी ऐसा कह नहीं सकता कि मुझे तनाव नहीं होता है, न हुआ था न है न होगा। आप में से कोई ऐसा कह सकता है? कोई भी नहीं कह सकता है। अभी हुआ है लेकिन टेम्परेरी, फिर जाएंगे तो फिर से वही स्थितियां तनाव पैदा कर सकती हैं। तो कहा गया 18वीं सदी ज्ञान में उन्नति की सदी थी, 19वीं सदी आविष्कारों की सदी रही, जब विज्ञान ने बहुत नए नए आविष्कार करके मनुष्य को जीवन के सुख सुविधा के साधन प्रदान करना प्रारंभ किया। 20वीं सदी वास्तव में सुख की सदी होनी चाहिए थी, लेकिन उसे कहा गया एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। और वर्तमान में हम सभी 21वीं सदी में हैं। मेडिकल साइंटिस्ट कहते हैं कि यदि यही हमारी जीवन शैली रही तो ये 21वीं सदी एज ऑफ पैनिक एंड डिप्रेशन हो जाएगी। तनाव का जो परिणाम है वो पैनिक एंड डिप्रेशन है। आज समाज में डिप्रेशन के केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। अकेले भारत में 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन की दवाइयां खाते हैं। तो क्यों 20वीं सदी में तनाव बढ़ा? उसका कारण था समाज के सभी क्षेत्रों में बहुत तीव्र गति से परिवर्तन हुए, और हमें भी समय के साथ चलना होता है। उतनी तीव्र गति से उस परिवर्तन को लाने के लिए जो प्रतिस्पर्धा और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई उसने तनाव को जन्म दिया। तो काफी वैज्ञानिकों ने इस पर अध्ययन किए, उसमें विशेष वैज्ञानिक हेंसले थे, डॉक्टर हेंसले, जिन्होंने तनाव पर अध्ययन किया और उसे परिभाषित किया। स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन कोपिंग एबिलिटी, यानी तनाव हमें तब होता है जब प्रेशर्स ज्यादा हैं, प्रॉब्लम्स ज्यादा हैं, लेकिन उसकी तुलना में जो कोपिंग एबिलिटी यानी आंतरिक सामर्थ्य जो होना चाहिए, क्षमता, यदि कम है तो जो हम महसूस करते हैं वह तनाव है। स्ट्रेस इज ए फॉर्म ऑफ पेन दैट कम्स टू टेल मी देयर समथिंग आई नीड टू चेंज। एक प्रकार का दर्द है जो मुझे ये एहसास दिलाता है कि मुझे कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है, और उस परिवर्तन को लाने के लिए हमें कुछ नया सीखना होगा। और आज हम देखते हैं कि प्रेशर्स हमारे ऊपर चारों तरफ से होते हैं। भूतकाल में हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई होती हैं जिनकी स्मृति हमें बार बार आती है, हम चाहते हुए भी कई बार उन बातों को भूल नहीं पाते, खासकर जिन बातों ने हमें हर्ट किया है यानी दुख पहुंचाया है। और जब उन्हें वर्तमान में भी हम बार बार सोचते हैं तो वही दुख हम आज भी महसूस करते हैं, मानो ये बहुत हल्का है, मैं इसको पकड़ती हूं तो आसान है, लेकिन अगर इसी मोबाइल को मैं 6 घंटा 8 घंटा ऐसे पकड़े रहूंगी तो क्या होगा, मेरे हाथ में दर्द होने लगेगा। तो जीवन में भी किसी भी बात को हम पकड़ कर रखते हैं, यदि बीती हुई बातों को हम बार बार स्मृति में लाते हैं तो वो वर्तमान में भी हमें दर्द देने लगती हैं। भविष्य की भी चिंता होती है, क्या होगा, कैसे होगा, जैसा हम चाहते हैं वैसा होगा कि नहीं होगा, कुछ भविष्य की अनिश्चितता, भय, ये सब भी वर्तमान में तनाव का अनुभव कराते हैं। और वर्तमान की समस्याएं तो चलती ही हैं, और इस तरह से ये प्रेशर्स हमारे ऊपर सदा बने हुए होते हैं। साइंटिस्ट हेंसले ने यह बताया कि जब हम तनाव की स्थिति में होते हैं तो हमारे शरीर में कुछ रासायनिक परिवर्तन होने लगते हैं। इन रासायनिक परिवर्तनों के दौरान हमारे शरीर में कुछ केमिकल्स बनते हैं जो हानिकारक होते हैं, जिन्हें एड्रेनालिन नॉरएड्रेनालिन स्टेरॉइड्स कहा जाता है, और ये हमारे सिस्टम को उत्तेजित करते हैं ताकि हम तनाव की स्थितियों का सामना कर सकें। लेकिन अगर लंबे समय तक हम तनाव में रहते हैं तो ये रसायन हमारे शरीर के अंगों के लिए स्लो पॉइजन का काम करते हैं और धीरे धीरे अनेक रोग उत्पन्न होने की संभावना हो जाती है, जिन्हें मनोकायिक रोग कहते हैं। तो वर्तमान समय मेडिकल साइंस में 70% रोग साइकोसोमैटिक रोग या मनोकायिक रोग हैं। येल यूनिवर्सिटी एक अमेरिका में है, जिसमें विद्यार्थियों के ऊपर एक अध्ययन किया गया तनाव का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव होता है। तो उन्हें उनके व्यक्तित्व के अनुसार उस आयु में दो भागों में बांटा गया। पहले ग्रुप में उन विद्यार्थियों को लिया गया जो जल्दी तनाव में आ जाते थे, जल्दी गुस्सा करते थे, बहुत कॉम्पिटिटिव नेचर के थे, अपने मन को शांत नहीं रख पाते थे। और दूसरे ग्रुप में उन विद्यार्थियों को लिया गया जो इसके विपरीत स्वभाव के थे, शांत स्वभाव के थे, धैर्य रख सकते थे। और उनके स्वास्थ्य की जांच की गई तो देखा गया कि उस समय दोनों ही ग्रुप का स्वास्थ्य सामान्य था, पर क्योंकि एक स्टडी थी तो हर 10 वर्ष में दोनों ही ग्रुप्स को हेल्थ चेकअप के लिए बुलाया जाता था। 50 वर्ष की आयु तक आते आते ये देखा गया कि जो पहला ग्रुप था उसमें दूसरे ग्रुप की तुलना में 5 गुना अधिक मृत्यु हो चुकी थी। यानी अगर दूसरे ग्रुप में 5 लोगों की हुई तो पहले ग्रुप में कितने हुई, 25 लोगों को। तो यहां ही सिद्ध होता है कि यदि तनावग्रस्त जीवन हम जीते हैं तो ऐसे रोग शरीर में उत्पन्न होते हैं जिससे 50 वर्ष की आयु में मृत्यु की संभावना 5 गुना अधिक हो जाती है। यही कारण है, क्योंकि ये हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, हमें अपने तनाव को कम करना आना चाहिए या हम तनाव मुक्त रह सकें ऐसी कला हमें जीवन में सीखना आवश्यक है। तो तनाव के हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ते हैं आप देख रहे हैं। सबसे पहला असर उसका हमारे हृदय पर आता है, दिल की धड़कन बढ़ती है, उसके साथ साथ ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और यदि कोरोनरी ब्लॉकेजेस हैं, यानी हृदय की धमनियों में अगर ब्लॉक हैं, सभी के तो नहीं होते हैं लेकिन जिसके भी ब्लॉकेजेस बन जाते हैं और यदि वो तनाव में आते हैं तो वो हार्ट की नलियां सिकुड़ती हैं और उसकी वजह से हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो ये देखा गया कि हृदय रोगों का एक बहुत बड़ा कारण तनाव है। अन्य कारण से भी हृदय रोग होते हैं लेकिन तनाव भी एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा असर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर आता है, यानी हाइपर एसिडिटी होती है जिसकी वजह से अल्सर्स होते हैं, कई बार पेट में दर्द भी हो सकता है, डायरिया होता है। हमारे नर्वस सिस्टम पर भी इसका असर आता है, उसकी वजह से स्टैमरिंग होना, यानी हाथ पांव कांपना, सिर में दर्द होना, नींद नहीं आना, बहुत अधिक पसीना छूटना, थकान बने रहना, डिप्रेशन होना, जैसे हमने पहले भी बात की, क्योंकि मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है, मस्तिष्क की कार्य क्षमता प्रभावित होती है, मस्तिष्क की खून की नलियां भी बहुत बारीक होती हैं और तनाव की स्थिति में ऑक्सीजन कम मिल पाती है, जिसकी वजह से एकाग्रता की शक्ति में कमी आती है, निर्णय शक्ति कम हो जाती है, स्मरण शक्ति भी कम होती है। और अगर लंबे समय तक तनाव बना रहता है तो फिर न्यूरोटिक और साइकोटिक बीमारियां होने लगती हैं, जिसमें से डिप्रेशन एक बीमारी है। अल्कोहलिज्म, ये भी देखा गया कि जो लोग ज्यादा तनाव में रहते हैं वो अपने तनाव को कम करने के लिए व्यसनों का सहारा लेते हैं, या तो वो शराब पीते हैं या ये तंबाकू चबाते हैं, सिगरेट पीते हैं, लेकिन क्या होता है, तनाव कम होता है या नहीं होता है, लेकिन परिवार का तनाव और साथ में बढ़ जाता है। तो ये व्यसन जो हैं वो स्वास्थ्य पर फिर धीरे धीरे और बुरा असर डालते हैं। डायबिटीज, आर्थराइटिस, ये भी साइकोसोमैटिक बीमारियां हैं। और ये भी देखा गया कि तनाव हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है, जिसके कारण इन्फेक्शंस भी लग जाते हैं। अगर वातावरण में कोई वायरस फैल रहा है या बैक्टीरिया फैल रहा है तो जिनकी इम्यूनिटी कम होती है उनको वो बीमारी जल्दी लग जाती है। आप सभी अनुभवी हैं अपने जीवन में किन कारणों से हम तनाव का अनुभव करते हैं, तो पहले हम आपसे शेयर करना चाहेंगे। कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां आप अपने फैमिली लाइफ में या वर्क प्लेस की लाइफ में या अपनी पर्सनल लाइफ में महसूस करते हैं जब आपको तनाव होता है, कोई भी बता सकते हैं। ओवरवर्क और जी मीटिंग की डेडलाइंस, काम के समय अगर डेडलाइंस, प्रोजेक्ट में डेडलाइंस देते हैं कि इतने समय में ये पूरा हो जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। इकोनॉमिक फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, बहने, हाँ जी, कोई हमारा कहना नहीं मानता है, बच्चे कहना नहीं मानते या परिवार वाले कहना नहीं मानते, जो भी सही बात है। हमारे अनुसार अगर कुछ नहीं होता है तो हमें तनाव होता है जी, तो तनाव होता है। अच्छा, और वर्किंग कल्चर, काम करने वाले साथी कैसे हैं, ठीक काम करते हैं नहीं करते हैं, और अच्छी अच्छी बातें सुना रहे हैं आप सभी। हाँ जी, डिस्टर्ब्ड फैमिली लाइफ, आपस में विचार नहीं मिलते हैं, एक दो को समझ नहीं सकते हैं, हाँ, डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, हाँ वो तो है ही, लेकिन हाँ नहीं वो तो बराबर है, लेकिन फिर भी हर एक के अपने रीजंस होते हैं ना, किस किस रीजन में हम ज्यादा स्ट्रेस फील करते हैं, तो वो थोड़ा सा हम शेयर कर रहे हैं। कंपटीशन भी, आज का तो जमाना ही कंपटीशन का है, हर जगह, पढ़ाई को छोड़ो, हर फील्ड में कंपटीशन है, बिजनेस में भी जाएंगे तो भी कंपटीशन है। तो वास्तव में जो भी समस्याएं हम अपने जीवन में महसूस करते हैं उसके ऊपर भी स्टडी की गई। होम्स एंड राहे, ये दो अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिन्होंने जीवन में घटने वाली सामान्य घटनाओं का अध्ययन किया, और उन्होंने बताया कि जो भी घटना हमारे जीवन में परिवर्तन लाती है वो तनाव पैदा कर सकती है। फिर कई बार वो खुशी की घटना भी हो सकती है, जरूरी नहीं है दुख में ही तनाव होता है, लेकिन खुशी में भी हो सकता है यदि जीवन में परिवर्तन आ रहा है। सबसे ज्यादा तनाव पैदा करने वाला कारण उन्होंने बताया डेथ इन द फैमिली, परिवार में यदि किसी की मृत्यु हो जाती है, और खासकर यदि बहुत प्रिय व्यक्ति हैं, जीवन साथी हैं, यदि उसकी मृत्यु होती है और असमय मृत्यु होती है, दुर्घटना में मृत्यु होती है, तो बहुत तनावपूर्ण होता है। डाइवोर्स एंड सेपरेशन, पति पत्नी में हमका टकराव होता है, वो साथ में नहीं रह सकते, आपस में कलह होता है, अलग रहने लगते हैं, और यदि फिर स्थिति तलाक तक पहुंचती है तो ये दो परिवारों के लिए बहुत तनावपूर्ण होता है। तो वेस्टर्न वर्ल्ड में तो ये बहुत कॉमन है, लेकिन भारतीय समाज में भी आज तलाक के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। मैरिज वैसे खुशी का अवसर है, लेकिन जैसे हमने कहा खुशी में भी तनाव होता है, तो इसके लिए हम आपको एक उदाहरण देना चाहेंगे कि एक बार एक बिजनेसमैन थे, उन्होंने एक लॉटरी का टिकट खरीदा, 1 करोड़ की लॉटरी का टिकट था, और भाग्य से उनकी वो लॉटरी खुल गई, लेकिन जो समाचार मिला वो घर में पत्नी को मिला। पत्नी ने सोचा कि ये हार्ट पेशेंट हैं, मुझे इनको सीधा नहीं बताना चाहिए, मैं अपने फैमिली डॉक्टर से राय कर लेती हूं। तो उन्होंने फैमिली डॉक्टर को बात किया, तो उन्होंने कहा कि उन्हें आप मेरे पास भेज दीजिए, हम समझा देंगे। जब वो गए डॉक्टर के पास तो डॉक्टर ने उनको पहले इधर उधर के समाचार की बातें की, फिर थोड़ा हेल्थ के बारे में बात की, और फिर कहा कि मानो आपको 10 लाख की लॉटरी निकले तो आप क्या करोगे। कहा 10 लाख मिलेंगे डॉक्टर तो मैं अपने घर में फर्नीचर ले लूंगा। फिर उन्होंने कहा अच्छा अगर आपको 50 लाख मिले तो क्या करोगे? कहा तो मैं कार ले लूंगा, नहीं तो घर ले लूंगा, मेरी दोनों ही आवश्यकताएं हैं। फिर उन्होंने कहा कि आपको 1 करोड़ की लॉटरी लगी है, आप क्या करोगे? तो कहा डॉक्टर आप क्यों मजाक करते हैं, जरूर मैंने टिकट खरीदा था लेकिन मैं इतना भाग्यवान नहीं हूं कि मुझे 1 करोड़ लॉटरी में मिल जाए। तो डॉक्टर ने कहा मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं, आपको 1 करोड़ की लॉटरी खुली है, क्या करोगे? तो 1 मिनट सोच के बोलते हैं डॉक्टर अगर ये सच है तो मैं 50 लाख आपको ही दे दूंगा। तो डॉक्टर को हार्ट अटैक हो गया। तो यहां भी ऐसा ही होता है, जो माता पिता होते हैं जिन्हें अपने बच्चों की शादी करनी होती है उनको कई प्रबंध करने पड़ते हैं, उसमें कई समस्याएं हो सकती हैं, दहेज की समस्या हो सकती है यानी धन की समस्या हो सकती है, ससुराल पक्ष वालों के व्यवहार की समस्या हो सकती है, ऐसी कई बातें उसके साथ जुड़ी हुई हैं जो खुशी के साथ साथ तनाव भी पैदा करती हैं। जिनकी शादी होती है उनको नए वातावरण में नए लोगों के बीच में एडजस्ट करना पड़ता है। धन की समस्या आपने शेयर किया, हम देखते हैं कि आज हम धन को बहुत महत्व देते हैं। आज विज्ञान ने सबको सुख सुविधा के इतने साधन दिए हैं कि हरेक मनुष्य चाहता है वो सब कुछ मुझे प्राप्त हो, उसके लिए धन की आवश्यकता होती है। और कई बार जब हमारे पास धन की कमी होती है तो हम गलत तरीकों से भी धन कमाना चाहते हैं, या धन की कमी नहीं भी है तो भी लोभ आज इतना अधिक है कि मनुष्य फिर भी गलत तरीकों से धन का संचय करते हैं। और जहां हम गलत तरीके से धन कमाते हैं ऐसा धन जीवन में कभी भी हमें शांति नहीं दे सकता। पहले कहते थे धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य भी गया तो कुछ गया और चरित्र गया तो सब कुछ गया। अब स्थिति क्या है? धन गया तो सब कुछ गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया और चरित्र गया तो कुछ नहीं गया। तो हम देखते हैं आज के जमाने में लोग धन कमाने के लिए अपने चरित्र की भी परवाह नहीं करते, अपने जीवन मूल्यों की परवाह नहीं करते, यहां तक कि संबंधों की भी परवाह नहीं करते। धन के लिए भाई भाई का नहीं रहता है, बेटा अपने पिता का नहीं रहता है, घरों में दीवारें खड़ी हो जाती हैं। धन संपत्ति के लिए एक दो को लोग जान तक से भी मार देते हैं, ऐसे कितने समाचार अखबारों में आए दिन होते हैं, क्योंकि हम धन को इतना महत्व देते हैं। लेकिन धन सब कुछ नहीं है, धन हमारे जीवन की आवश्यकता जरूर है लेकिन सब कुछ नहीं है। आप धन से घड़ी खरीद करके ला सकते हैं लेकिन समय खरीद सकते हैं, किताबें खरीद के ला सकते हैं लेकिन ज्ञान खरीद सकते हैं, बिस्तर खरीद के ला सकते हैं लेकिन नींद खरीद सकते हैं, तो उसकी अपनी सीमाएं हैं। हम उसको उतना ही महत्व दें जितना हमारे जीवन के लिए वो आवश्यक है, उसे सब कुछ नहीं समझें, तभी ईमानदारी से सच्चाई से कमाया हुआ धन हमें जीवन में सुख और शांति देता है। फिर बच्चों की समस्या, ये भी आज के समय में क्योंकि जनरेशन गैप बहुत तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है, हम देखते हैं ये 10 सालों में जो परिवर्तन हुए वो पिछले 50 साल में भी समाज में नहीं हुए। तो आज की जनरेशन और 10 साल में ही बहुत अंतर आ जाता है, आपके विचार उनके विचारों से बिल्कुल मिलते नहीं हैं। कई बार माता पिता की बच्चों से बहुत अपेक्षाएं होती हैं, बच्चे ये बने ये करें, अगर बच्चे योग्य हैं तो अवश्य आपकी अपेक्षाओं को पूरा करते हैं, लेकिन अगर वो योग्य नहीं हैं या उनकी रुचि ही किसी दूसरे क्षेत्र में है, आज इतने क्षेत्र हैं, आज उनके लिए इतने ऑप्शंस हैं समाज में कि वो अपने अपने तरह से अपने जीवन में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं और हम अपने सपने उनसे पूरा करवाना चाहते हैं, तो कई बार उसके बीच में बहुत टकराव होता है। और अगर बच्चों पर बहुत दबाव पड़ता है मानो माता पिता की तरफ से, तो कई बार वो गलत कदम भी उठा लेते हैं। ये देखा गया जब भी परीक्षा परिणाम आते हैं कई बच्चे जो हैं समाचारों में होता है वो सुसाइड करते हैं। तो ऐसे ही पिछले वर्ष जब परिणाम आए थे तो एक बच्चे ने सुसाइड किया और उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा मेरे पिता चाहते हैं कि मैं इंजीनियर बनूं लेकिन मैं अभी एग्जाम में फेल हो गया हूं, मुझे पता है कि मैं कितना भी पढ़ लूं मैं इंजीनियर नहीं बन सकता, लेकिन मैं अपने पिता को निराश भी नहीं करना चाहता और इसीलिए मैं ये कदम उठा रहा हूं। तो हमेशा देखिए कि बच्चे कितना योग्य हैं, कितना वो कर सकते हैं, उतना ही उनसे हम अपेक्षा रखें, और नहीं तो जो वो कर सकते हैं, जिसमें उनकी रुचि है उसी में उनको मार्गदर्शन दें, प्रेरणा दें। कई बार बच्चों की भी माँ बाप से अपेक्षाएं होती हैं, जैसे माँ बाप की बच्चों से अपेक्षाएं होती हैं, तो अगर हम ये देखते हैं बच्चे गलत संग में जा रहे हैं या आज्ञाकारी नहीं हैं, तो उसका कारण है कि हमने उनके विश्वास को नहीं जीता है। तो वहां पर कहीं हमें परिवर्तन अपने अंदर लाना होता है, तब हम उनके विश्वास को जीत पाते हैं और जैसा चाहें उनके जीवन को दिशा दे सकते हैं। ऐसे ही कार्य क्षेत्र पर भी कई ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं जहां तनाव होता है। आप जहां कार्य करते हैं वहां कोई ना कोई अधिकारी होते हैं, और यदि वो बहुत कठोर स्वभाव के हैं, आप सारा दिन बहुत मेहनत करते हैं, आपके कार्य की प्रशंसा आपको नहीं मिलती है, लेकिन कहीं थोड़ी सी चूक हो जाती है, गलती हो जाती है, तो आपको चार लोगों के सामने अपमानित कर दिया जाता है, बीइंग फायर्ड। अगर ऐसा बॉस है तो फिर बॉस को देखते ही कईयों को तनाव होता है। कम्पीटिंग विद ए कलीग, साथियों के साथ कंपटीशन थोड़ा बहुत तो हमेशा ही रहता है। अगर एक सीमा तक कंपटीशन होता है तो वो जीवन में हमें प्रगति में मदद करता है, लेकिन सीमा से ज्यादा कंपटीशन हमेशा हमारे लिए हानिकारक होता है और हमारे स्वास्थ्य पर भी उसका बुरा असर होता है, इसलिए ऐसा कंपटीशन हमें छोड़ देना चाहिए। कन्फ्लिक्ट विद कलीग, साथियों के साथ अगर मतभेद होते हैं, हमारे विचार नहीं मिलते, लेकिन कार्य हमें उन्हीं के साथ करना है, वही हमारे कलीग्स हैं, फिर उनका हमें समय पर सहयोग नहीं मिलता है, तो फिर ऐसा वातावरण तनाव पैदा करता है। डिमोशन, कई बार प्रमोशन की बजाय डिमोशन हो जाता है। प्रमोशन माना पदोन्नति होने की बजाय हमारा पद कम कर दिया जाता है, और कारण होता है हमारे कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स होते हैं, गलतियां होती हैं, और कहते हैं लॉस ऑफ स्टेटस इज मोर स्ट्रेसफुल देन लॉस ऑफ मनी एंड कम्फर्ट्स। व्यक्ति की क्योंकि इसमें बदनामी होती है, इसके कारण अगर उसका पद कम कर दिया जाता है तो उसका तनाव उसे ज्यादा महसूस होता है। एक्सेसिव वर्कलोड, आपने भी शेयर किया कि जहां बहुत कार्य होता है वहां हम अपने आप को समय नहीं दे पाते, अपने परिवार को पूरा समय नहीं दे पाते, तो फिर तनाव होने लगता है। नॉइजी एनवायरमेंट, अगर वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं है, बहुत ट्रैफिक है, पोल्यूशन है, सबॉर्डिनेट्स अगर योग्य नहीं है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, सबके साथ शेयर कर रहे थे, तो वर्किंग एनवायरमेंट अगर अच्छा नहीं है तो भी तनाव होता है। कोई नया कार्य शुरू करते हैं तो शुरू में वो तनावपूर्ण होता है। आजकल लोग बहुत पढ़ लिख जाते हैं लेकिन जैसा जॉब वो चाहते हैं वैसा नहीं मिलता है, जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, तो भी तनाव होता है। तो एक रिसर्च स्टडी में देखा गया 40% एम्प्लॉयज को बहुत अधिक कार्य का तनाव था, और जब उनके तनाव को दूर करने के लिए उचित कदम उठाए गए तो उनके कंपनसेशन क्लेम में 70% तक कमी आ गई ना, इतना अच्छा परिणाम उसका मिला। तनाव के बारे में कुछ भ्रामक धारणाएं भी हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमें समझ में नहीं आता हमें तनाव हो रहा है कि नहीं हो रहा, डॉक्टर से चेकअप कराएंगे तब समझ में आएगा कि मुझे तनाव हो रहा है। ये सही है या गलत है? अपना तनाव हमें समझ में आता है या नहीं आता है? आता है, क्योंकि जैसे ही हम तनाव में आते हैं हमारे मन की स्थिति, हमारे मन की स्थिति अशांत होती है, हम दबाव में होते हैं, परेशान होते हैं, उसे ही हमें समझ में आने लगता है, कुछ शारीरिक लक्षण भी प्रकट होने लगते हैं। तो तनाव कम करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने तनाव को पहचानें, तभी उसको दूर करने के लिए हम कुछ कदम उठा पाएंगे। फिर ये भी सोचते हैं कि जीवन में यदि हम सफल होना चाहते हैं, यदि हम प्रगति करना चाहते हैं, जिम्मेवारी से काम करना चाहते हैं, तो कुछ ना कुछ तनाव तो होगा ही, बिना तनाव के जीवन में सफल होना संभव नहीं है। सही है या गलत है? क्या समझते हैं? सही है, जो समझते हैं सही है वो हाथ उठाएं। अच्छा, काफी है। तो जरूर हमें ऐसा लगता है सही है हाँ, क्योंकि आज तक हम इसी तरह से कार्य करते आए हैं। आप यहाँ इस ग्राफ में देख रहे हैं कि जब हम तनाव में कार्य करते हैं तो हमारे शरीर में कैटाकोलामिन्स बनते हैं, वो हमारी परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं। तो कुछ समय तक जरूर हमें महसूस होता है कि तनाव के कारण हमारी परफॉर्मेंस बढ़ गई, लेकिन कुछ समय बाद हमारे शरीर में कॉर्टिसोल बनता है जो हमें थकाता है और उससे हमारी परफॉर्मेंस कम होने लगती है और अल्टीमेटली हमारी परफॉर्मेंस कम हो जाती है। तो यदि तनाव में हम सफल होते हैं या जीवन में कुछ प्राप्त करते हैं, उसकी कीमत हमारे शरीर को चुकानी पड़ती है, क्योंकि हमारे शरीर में वो हानिकारक केमिकल्स जरूर बनते हैं। हमारा शरीर ये अंतर नहीं कर पाता कि हम क्यों तनाव में हैं, हम सफल होने के लिए तनाव में हैं या किसी समस्या के कारण तनाव में हैं। तो कीमत तो चुकानी ही पड़ती है। तो 35-40 तक हो सकता है आप अपने जीवन में वो सफलता प्राप्त कर लेते हैं, वो पद प्राप्त कर लेते हैं, उतना धन कमा लेते हैं जितना आप चाहते हैं, लेकिन अब आप हेल्थ चेकअप कराएंगे तो आपको पता चलेगा ब्लड प्रेशर शुरू हो गया है, डायबिटीज शुरू हो गई है, हार्ट की बीमारी शुरू हो गई। सब बीमारियां ऐसी हैं जिनके साथ इंसान को जीवन भर जीना पड़ता है। एक बार होने के बाद इनका कोई क्योर नहीं है। पहले आप कमाते हैं और फिर आप स्वस्थ रहने के लिए खर्च करते रहते हैं, फिर जितना भी जीवन है उतना हम स्वस्थ रहने के लिए खर्च करते हैं, तो वो कीमत हमने उसकी चुकाई। लेकिन यदि हम दृढ़ इच्छा शक्ति से, उत्साह से, आत्मबल से कार्य करते हैं तो भी हम जीवन में सफल होते हैं और उसका हमारे शरीर पर कोई हानिकारक प्रभाव भी नहीं पड़ता है। फिर ये भी देखा गया कि लोग अपनी परिस्थितियों के लिए दूसरों को जिम्मेवार ठहराते हैं। 400 लोगों के ऊपर एक सर्वे किया गया, उनसे पूछा गया आपके तनाव का कारण क्या है, तो 80% ने कहा, जैसे हमने आपसे पूछा, तो 80% ने कहा दूसरों के कारण हमें तनाव होता है या परिस्थितियों के कारण हमें तनाव होता है। किसी ने भी ये नहीं कहा कि हमें स्वयं के कारण तनाव होता है। और जब हम अपनी एक उंगली दूसरे की ओर उठाते हैं तो 3 उंगली हमारे स्वयं की ओर है। जैसे एक सास को पूछा गया, उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता था, तो उसको पूछा गया आपका ब्लड प्रेशर क्यों हाई हो जाता है, तो उसने कहा मेरी बहू के कारण, मैं जैसा चाहती हूं वैसा ये नहीं करती है और ही मेरा सामना करती है, इसलिए मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। वो बहू को सिर दर्द रहता था, उसको पूछा गया आपका सिर क्यों, आपके सिर में क्यों दर्द रहता है, तो उसने कहा मेरी सास के कारण, मेरे हर काम में मेरी सास मुझे टोकती है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और उसके कारण मेरा सिर दर्द हो जाता है। ऐसे ही वर्क प्लेस पर अधिकारियों को पूछा गया, मैनेजमेंट को पूछा गया आपको क्यों तनाव होता है, तो उन्होंने कहा वर्कर्स के कारण, काम करना नहीं चाहते हैं लेकिन उनकी मांगे बहुत ज्यादा होती हैं, अगर मांगे पूरी नहीं करो तो यूनियन बनाते हैं, हड़ताल करते हैं, सचमुच आजकल लोगों से काम कराना बहुत मुश्किल है। वर्कर्स से पूछा तो उन्होंने कहा मैनेजमेंट के कारण, मैनेजमेंट काम तो बहुत लेना चाहती है लेकिन जो वेतन हमें देना चाहिए, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती हैं। तो वहां सबकी उंगली कहाँ है। ऐसे ही माता पिता से पूछो तो क्या कहेंगे, बच्चों के कारण, और बच्चों से पूछो तो क्या कहेंगे, माता पिता के कारण। तो हर एक किसको बता रहा है, दूसरे को। तो जब हमने एक उंगली दूसरे की ओर की तो 3 उंगली हमारे स्वयं की ओर है। अगर एक दोष उसमें है तो पहले 3 दोष किसमें है, किसे पहले बदलना चाहिए, हमें। लेकिन हम क्या सोचते हैं, मैं बिल्कुल सही हूं, मैं जो सोच रही हूं, मैं जो कर रही हूं वो सही है, इनको बदल जाना चाहिए। सास हमेशा सोचेगी बहू को बदल जाना चाहिए, बहू क्या सोचेगी, मेरी सास को समय को समझना चाहिए, हाँ आज का समय कैसा है। अधिकारी कर्मचारियों से अपेक्षा रखते हैं, कर्मचारी अधिकारियों से, हाँ मैनेजमेंट को ऐसा होना चाहिए, मैनेजमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी हमेशा हम दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं, ना वो बदलते हैं ना हम बदलते हैं, हमारी समस्याएं बढ़ती जाती। लेकिन राजयोग स्पिरिचुअलिटी हमें ये सिखाती है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, हम बदलेंगे तो जग बदलेगा, हम बदलेंगे तो ही दूसरों को परिवर्तन की हम प्रेरणा दे सकते हैं। एक बार एक पति पत्नी ट्रांसफर होकर के किसी दूसरे शहर में गए, तो वहां उन्होंने रहने के लिए एक फ्लैट लिया। और आजकल अपार्टमेंट्स होते हैं जहां आमने सामने फ्लैट बने हुए होते हैं, तो ऐसे ही उनका फ्लैट भी दूसरे अपार्टमेंट के फ्लैट के सामने था। तो शाम के समय वो अपनी बालकनी में बैठकर चाय पी रहे थे, तो देखा सामने वाले फ्लैट की जो बहन है वो कपड़े सुखा रही है। तो जब इसने देखा तो उसको लगा कपड़े साफ नहीं धुले हुए हैं, तो उसने अपने पति को कहा कि देखो इसने कैसे कपड़े धोए हैं, कपड़े साफ नहीं धुले हैं। दूसरे दिन भी जब वो चाय पी रहे थे तो शायद उनके कपड़े धोने का टाइम था, वो कपड़े सुखा रही थी, तो आज भी उसको लगा कपड़े साफ नहीं धुले हुए हैं। तो उसने कहा लगता है इनके पास अच्छा सर्फ नहीं है, इनको इनके कपड़े साफ नहीं धुलते हैं। फिर तीसरे दिन जब वो चाय पी रहे थे तो आज भी वो बहन कपड़े सुखा रही थी, लेकिन आज उसको लगा कपड़े साफ धुले हुए हैं। तो उसने अपने पति को कहा कि आज तो देखो इसने कपड़े कितने साफ धोए हैं। तो पति ने कहा आज मैंने बालकनी का शीशा साफ कर दिया है। अब कमी कहाँ थी और देख कहाँ रहे थे। तो हमेशा हम दूसरों की कमी देखते रहते हैं अपने जीवन में, लेकिन राजयोग हमें क्या सिखाता है, पहले हमें स्वयं को देखना है, हम बाद में हम दूसरों को देखें। फिर कार्य के लिए भी हम कहते हैं, जैसे डेडलाइंस की बात की कि हमें क्योंकि डेडलाइंस मीट करनी पड़ती हैं, प्रोजेक्ट्स टाइम पर पूरे करने होते हैं, उसका दबाव रहता है। एक्चुअली कई कॉरपोरेशंस ऐसे होते हैं जो अपने सबॉर्डिनेट्स पर वो प्रेशर बनाते हैं, और कई बार वो प्रेशर्स रियली मदद भी करते हैं कि आप समय पर काम पूरा करो, नहीं तो वो काम बहुत लंबे समय तक चलता रहता है और जितना प्रॉफिट उनको मिलना चाहिए वो फिर नहीं मिल पाता है। एक बार एक बिजनेसमैन, उसे अपनी बेटी की शादी करनी थी और उसने एक विज्ञापन निकाला कि मेरे को इकलौती बेटी की शादी करने के लिए एक साहसी लड़का चाहिए और मेरे बाद वही मेरा बिजनेस भी संभालेगा, लेकिन उसकी एक शर्त है कि मेरे घर के सामने जो स्विमिंग पूल है वो एक कोने से दूसरे कोने तक उसे पार करना है। तो बहुत सहज था। तो ऐसा विज्ञापन देख करके बहुत सारे युवक आए वहां पर, तो देखा कि वो स्विमिंग पूल जो था वो साधारण स्विमिंग पूल नहीं था, उसमें बहुत सारे सांप थे। अब किसी की भी हिम्मत नहीं हुई, सब ये देख रहे थे लेकिन कोई कूद नहीं रहा था उसमें, पर एक किनारे से एक युवक वो स्विमिंग पूल में कूदा और बड़ी मुश्किल से सांपों से बचते हुए दूसरे किनारे पर निकला। तो जब वो निकल गया तो बिजनेसमैन वहीं खड़ा था और उसने उसकी पीठ थपथपाई, उसने कहा शाबाश, मेरी शर्त के मुताबिक तुम मेरा बिजनेस संभालोगे और मेरी बेटी से भी तुम्हारी शादी होगी। उसने कहा मुझे न तो आपका बिजनेस संभालना है न मुझे शादी करनी है, पहले तो मुझे उसे ढूंढने दो जिसने मुझे इस पूल में धक्का दिया। लेकिन वो धक्के से जो काम वो खुद नहीं कर सकता था वो धक्के से हो गया, है ना। तो कई बार हमारी क्षमता जो है वो उस प्रेशर से बढ़ जाती है, वो हमें बाद में समझ में आता है, लेकिन फिर भी वो प्रेशर किसी को पसंद नहीं आता है। जैसे कि उसने कहा कि मुझे वो प्रेशर, उसको भी वो प्रेशर अच्छा नहीं लगा। लेकिन जब भी हम काम करते हैं और मानो वो ओवरवर्क हो रहा है, तो वहां पहले हम देखें कि काम के प्रति हमारी भावनाएं कैसी हैं। यदि हम अपने काम को पसंद करते हैं, दिल से करते हैं, तो वो काम हमें खुशी देता है, वो काम कभी भी हमें तनाव नहीं देता, फिर वो चाहे कितना भी कार्य हो। लेकिन यदि हम उस काम को मजबूरी से करते हैं, पसंद नहीं करते लेकिन हमें करना पड़ता है, तो फिर वो थोड़ा काम भी हमें तनाव देने लगता है। लेकिन फिर भी ओवरवर्क को हम टाइम मैनेजमेंट से व्यवस्थित कर सकते हैं, जो इम्पॉर्टेंट टास्क हैं, अर्जेंट हैं, उन्हें हम पहले कर दें, उन्हें हम प्रायोरिटी दें, जो लेस इम्पॉर्टेंट अर्जेंट होते हैं उन्हें हम थोड़ा पोस्टपोन भी कर सकते हैं, और लीस्ट इम्पॉर्टेंट हैं उनको तो आप बात के लिए भी ले सकते हैं। आवश्यकता है तो आप ये भी कह सकते हैं कि हमें और लोगों का भी सहयोग चाहिए ताकि हम समय पर उस काम को पूरा कर सकें। तो यदि हमें मैनेजमेंट को कुछ बताने की आवश्यकता होती है उस कार्य के बारे में, तो अवश्य बताएं और उसे व्यवस्थित रूप से करें, तो वो ओवरवर्क की समस्या को हम मैनेज कर पाएंगे। अपने तनाव को कम करने के लिए ज्यादातर हम मनोरंजन के साधन अपनाते हैं, या तो हम पार्टीज में जाते हैं, अपने भोजन में परिवर्तन लाते हैं, होटल रेस्टोरेंट में जाकर के खाएंगे, हॉलीडे के लिए जाएंगे, कुछ लोग क्लब्स में भी जाते हैं। आजकल तो बड़े बड़े शहरों में लाफिंग क्लब्स बने हुए होते हैं जो लोगों को आर्टिफिशियली हंसाते हैं ताकि उनके तनाव दूर हो जाए। आप में से कोई है ऐसे जो कभी ऐसे क्लब्स में गए हों, लाफिंग क्लब्स वगैरह में हैं? देखो कोई कोई है। फिर या फिर सिनेमा देखते हैं, या कुछ कुछ लोग योगा जो योगासन वाला योगा है, प्राणायाम है, वो करते हैं, गेम्स खेलते हैं, कुछ मेडिटेशन भी करते हैं, कुछ व्यसन का सहारा भी लेते हैं जो बताया, शराब पीते हैं या सिगरेट पीते हैं, कुछ नींद की गोलियां भी लेते हैं, कुछ म्यूजिक सुनते हैं। हर एक का अपना अपना तरीका है। हम कोई ना कोई उपाय करते हैं कि जो तनाव हम महसूस कर रहे हैं उससे हम मुक्त हो जाएं। लेकिन ये सब सिर्फ हमारे तनाव को हम पोस्टपोन करते हैं। जितना समय हम मनोरंजन कर रहे होते हैं उतना समय हमें लगता है बिल्कुल रिलैक्स है, कोई तनाव नहीं है, लेकिन जैसे ही वो परिस्थिति पुनः हमारे सामने होती है फिर से हमारा तनाव शुरू हो जाता है। मीन्स दीज आर नॉट द रियल रेमेडीज फॉर स्ट्रेस। इसके लिए हमें ये जानना होगा तनाव का मूल कारण क्या है, क्यों तनाव हम महसूस करते हैं। उसका कारण परिस्थितियों के प्रति हमारी सोच, हमारा सोचने का तरीका कैसा है। जैसे ही तनाव उत्पन्न करने वाली परिस्थिति आती है हमारे जीवन में, ज्यादातर हम नेगेटिव सोचते हैं, यानी उसमें बुरा क्या होगा, उसमें हमारी हानि क्या हो सकती है, वो हम ज्यादा सोचते हैं। और जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम महसूस करते हैं, यानी थिंकिंग अगर नेगेटिव है तो फीलिंग्स होती हैं पैनिक, फियर एंड वरी, और वैसा ही हमारा बिहेवियर होता है, उसका असर हमारी परफॉर्मेंस पर आता है। लेकिन अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं, हम पॉजिटिव भी सोच सकते हैं, ये हमारी चॉइस है। जैसे इस हाथ को अगर मैं ऊपर करना चाहूं ऊपर कर सकती हूं, आगे करना चाहूं आगे कर सकती हूं, तो जैसा मुझे इस हाथ को चलाना है ये मेरे कंट्रोल में है। ऐसे ही मन के विचारों को भी हम जिस दिशा में ले जाना चाहें उस दिशा में हम ले जा सकते हैं। तो अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारी फीलिंग्स होंगी कॉन्फिडेंस, पेशेंस, पीस, वो विश्वास हमारे अंदर होगा, धैर्य होगा कि हम उस परिस्थिति को पार कर जाएंगे। मानो आपके घर में मेहमान आते हैं और आप अपनी बेटी को, बहू को या सर्वेंट को, जो भी आपके घर में है, उसको आप कहते हैं चाय बनाने के लिए। वो चाय बना के लाती हैं और जैसे ही नजदीक पहुंचती हैं किसी कारण से वो पूरी ट्रे गिर जाती है और वो बर्तन भी टूटते हैं, पूरी चाय बिखरती है, कपड़े खराब होते हैं। अब हम दो तरह से रिएक्ट कर सकते हैं। नेगेटिव वे में रिएक्ट करेंगे तो हम तुरंत गुस्सा करेंगे, उनको डांटने लगेंगे और हम भी तनाव में, मेहमान भी और पूरे वातावरण में तनाव होगा, जो काम करने वाला है उसे भी भय होगा। लेकिन हो सकता है कि अगर हम पॉजिटिव वे में रिएक्ट करते हैं तो हम कुछ भी ना कहें और ही उनको मदद करें वो सब हटाने में, और कहें कि अच्छा ठीक है हम दूसरी चाय बना लेते हैं। तो वो परिस्थिति जरूर उत्पन्न हुई लेकिन हमने उसे सहज रूप से पार कर लिया। तो ऐसे दिन भर में कितनी छोटी छोटी बातें हमारे सामने आती हैं जब हम नेगेटिव या पॉजिटिव तरह से रिएक्ट करते हैं। अगर हम नेगेटिव रिएक्ट कर रहे हैं तो उन्हीं छोटी बातों में हम तनाव महसूस करते हैं, और यदि हम पॉजिटिव रहते हैं तो सहज रूप से हम उसे पार कर लेते हैं। एक बार एक शराबी व्यक्ति था, उसके दो बेटे थे। जो बड़ा बेटा था वो ये देखता था कि पिता शराब पी के आते हैं रात को देर तक और माँ से झगड़ा करते हैं, कई बार माँ पर हाथ भी उठाते हैं, तो ये सब देख करके उसे अच्छा नहीं लगता था और उसने अपने मन में निश्चय कर लिया कि मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। उसको बिल्कुल नफरत हो गई शराब से। जो छोटा था वो बहुत ही छोटा था, उसको इतनी समझ नहीं थी, तो वो अपने पिता को जब ऐसे करते हुए देखता था तो सोचता था पिताजी बहुत रौब जमाते हैं। तो कई बार वो क्यूरियोसिटी ना, जिज्ञासावश, जब घर में शराब रह जाती थी थोड़ी तो पी के देखता था, अब उसे थोड़ी पता था कि इससे नशा होने लगेगा, तो धीरे धीरे उसको शराब का नशा लगने लगा और वो भी शराबी हो गया। अब ये जो बड़ा बेटा था ये पढ़ लिख करके अच्छा बिजनेसमैन बना, बहुत अच्छा वो बिजनेस करता था, अच्छा कमाता था और पूरे परिवार को वही संभालता था। लेकिन ये जो छोटा बेटा था वो शराबी हो गया, कुछ काम नहीं करता था, उसको कोई नौकरी ही नहीं मिलती थी। तो एक दिन एक भाई ने उसको पूछा, बड़े बेटे को, कि तुम दोनों एक ही परिवार के हो, दोनों में इतना अंतर है, ऐसे कैसे? तो उसने कहा, हम दोनों ने अपने पिता से सीखा है, मैंने अपने पिता से शराब से नफरत करना सीख लिया और इसने पिता से शराब पीना सीख लिया। परिस्थिति तो दोनों के सामने बिल्कुल एक जैसी थी, लेकिन दोनों का सोचने का तरीका अलग अलग था, इसीलिए दोनों का जीवन बिल्कुल अलग हो गया, उनकी जीवन की दिशा ही बिल्कुल अलग थी। तो किसी भी परिस्थिति में हम कैसे सोचते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और कई बार जब हम हानि के बारे में ज्यादा सोचते हैं तो वास्तव में उसमें हमारा लाभ भी छुपा होता है। जो भी घटनाएं हमारे जीवन में घटती हैं, कई बार देखने में वो बुरी होती हैं, लेकिन उसमें हमारा भला भी होता है। हमारे शास्त्रों में ये बात आती है कि जो हुआ था वो अच्छा था, जो हो रहा है वो अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। तो इसके ऊपर एक बहुत अच्छी बोध कथा आती है कि एक बार एक राजा का एक बहुत बुद्धिमान मंत्री था और वो अपने हर काम में मंत्री से सलाह लेता था। एक बार राजा की उंगली कट गई तो उसने मंत्री को दिखाया, तो वो तो चाहता था कि उनको सहानुभूति मिलेगी, लेकिन मंत्री ज्ञानी था, उसने कहा, महाराज जो हुआ वो अच्छा हुआ। राजा को नहीं पसंद आया, उसने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी उंगली कट गई और मंत्री जी कहते हैं अच्छा हुआ, ये मेरे विश्वास पात्र नहीं है। तो उसने गुस्से में आकर के अपने सैनिकों से उनको जेल में बंद करवा दिया। अब राजा को शिकार खेलने का शौक था और थोड़े दिनों में वो जंगल में शिकार खेलने के लिए जाता है। शिकार खेलते खेलते वो बहुत दूर निकल जाता है और वहां पर उस दिन आदिवासी कबीले के लोग देवी को बलि चढ़ाने के लिए, किसी मनुष्य की बलि चढ़ाने के लिए ढूंढ रहे थे। तो राजा को पकड़ लेते हैं और राजा को जब ये सारी बात समझ में आती है तो वो उनको बताता है, मैं आपका राजा हूं, आप मेरी बलि चढ़ाओगे। तो जब उनको पता चलता है ये राजा है तो वो ये कहते हैं, राजा तो सबसे उत्तम पुरुष होता है, ऐसी बलि हम देवी को चढ़ाएंगे तो हमारी देवी तो बहुत प्रसन्न होगी, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। लेके जाते हैं उसको मंदिर में और वहां पुजारी देखता है, तो पुजारी ये देखता है कि बलि संपूर्ण है या नहीं, क्योंकि बलि का अंग भंग नहीं होना चाहिए, ऐसा नियम होता है। तो देखा राजा की उंगली कटी हुई है, तो जैसे ही उसने ये देखा उसने कहा, इसको छोड़ दो, ये तो बलि के लायक नहीं है, देवी इसे स्वीकार नहीं करेगी, किसी संपूर्ण मनुष्य को ढूंढ के ला। तो राजा छूट जाता है वहां से, और जब वो छूटता है और अपने राज्य में लौट रहा होता है तो उसे मंत्री की बात याद आती है, मंत्री जी ने कहा था जो हुआ वो अच्छा हुआ, तो उसको लगा सचमुच आज मेरी बलि चढ़ जाती अगर मेरी उंगली कटी हुई नहीं होती, ये तो अच्छा ही हुआ मेरी उंगली कटी हुई थी। तो जैसे ही वो राज्य में पहुंचता है वो मंत्री को जेल से बुलाता है और उसको सारी कहानी सुना के कहता है, मंत्री जी मुझे क्षमा कर दीजिए, लेकिन एक सवाल मुझे पूछना है, मैंने आपको जेल में बंद किया, ये तो आपके साथ बुरा ही हुआ। तो मंत्री ने कहा, नहीं महाराज ये भी अच्छा हुआ। उसने कहा, कैसे? उसने कहा, मैं हमेशा आपके साथ जाता हूँ, आज मैं जेल में था इसीलिए आपके साथ नहीं था, और मैं आपके साथ होता तो आपकी बजाय मेरी बलि चढ़ जाती, तो हम दोनों ही बच गए, भगवान को हम दोनों को बचाना था, इसीलिए ऐसी घटना हुई। तो देखने में घटना दोनों के लिए बुरी थी लेकिन उसमें दोनों का ही भला छुपा हुआ था। तो कई बार जो भला होता है वो भविष्य के पर्दे में होता है, हमें वर्तमान में वो समझ में नहीं आता है, लेकिन जब जीवन के इस राज को हम समझते हैं तो जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदलता है और किसी भी परिस्थिति को हम बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं और हम समझते हैं कि जरूर इसमें मेरा कोई भला ही है और आने वाले समय में वो मुझे धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो धैर्य हमारा बना रहता है। हमने देखा कि तनाव हमें तब होता है जब प्रेशर्स हमारे ऊपर ज्यादा हैं और कोपिंग एबिलिटी कम है। तो तनाव कम करने के लिए या तो हम प्रेशर्स कम कर लें, या तो हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम ही ना आए, कोई समस्या ही उत्पन्न ना हो, तो हमें तनाव होगा ही नहीं। पर यह संभव नहीं है, क्योंकि समस्याएं हमारे हाथ में नहीं है। कोई भी समस्या हमसे पूछ कर नहीं आती है। जीवन बहुत सुख शांति से बीत रहा है, अचानक ही कहां से पता नहीं कौन सी परिस्थिति उत्पन्न होती है और हम तनाव महसूस करने लगते हैं। तो दूसरा तरीका हो सकता है कि हम कोपिंग एबिलिटी बढ़ाएं, हमारी सामर्थ्य को बढ़ाएं, हमारी सामना करने की शक्ति को हम बढ़ाएं। वो हम कर सकते हैं, वो हमारे कंट्रोल में है। लेकिन क्योंकि ये भीतरी शक्ति है, ये बाहर से हमें नहीं आती है, तो उसके लिए हमें ऐसे प्रयास करने होते हैं जो हमें वो शक्ति प्राप्त हो, और उसके लिए मेडिटेशन या ध्यान करना ये सबसे सहज उपाय है। कि यदि प्रतिदिन हम कुछ समय मेडिटेशन करते हैं तो हमारी इनर स्ट्रेंथ, इनर पावर्स बढ़ने लगती हैं। आप यहाँ राजयोग सीख रहे हैं, मॉर्निंग में भी आपके दो सेशंस हुए हैं, तो आपने समझा राजयोग अभ्यास में पहले हम आत्मचिंतन करते हैं। जब हम आत्मचिंतन करते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं, सेल्फ ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो हमें ये समझ में आता है कि मेरी कमी कहाँ है और कहाँ मुझे परिवर्तन लाना है। क्योंकि हम अंतर्मुखी होते हैं, सामान्यतः हम क्या होते हैं, बाह्य मुखी होते हैं। जैसे हमने बात की, हम दूसरों को देखते हैं, इसलिए दूसरों की कमियां ही हम ज्यादा देखते हैं और उनके ही परिवर्तन का हम सोचते हैं। लेकिन जब हम योग करते हैं तो सबसे पहले हम अंतर्मुखी होते हैं, हम स्वयं को देखने लगते हैं। और जैसे ही हम स्वयं को देखते हैं, हमें अपनी कमी समझ में आती है, समस्या समझ में आती है, कहाँ परिवर्तन कैसे किया जा सकता है वो भी समझ में आता है, और हमारा आधा तनाव वहीं कम हो जाता है। दूसरा चरण राजयोग का है, हम ईश्वर से संबंध का अनुभव करते हैं, जो सर्वशक्तिवान है, शांति का सागर है। आपने ये सब समझा। तो जब ईश्वर से वो संबंध होता है, मन को शांति मिलती है, ईश्वरीय शक्तियां हमारे अंदर हम महसूस करते हैं, तो हमारा मनोबल बढ़ जाता है, आत्मबल बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। और हम महसूस करते हैं कि जब भगवान का साथ है तो कोई भी बात, कोई भी समस्या बड़ी नहीं है, हम उसको सहज रीति से पार कर जाते हैं, या परिस्थिति हमें खेल की तरह लगती है। ऐसे होता है जब मनोबल ऊंचा होता है, मानसिक स्थिति ऊंची होती है, तो बड़ी बातें भी छोटी लगती हैं, और जब मन कमजोर होता है तो छोटी बातें भी बड़ी लगती हैं। इसलिए कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। एज यू थिंक सो यू बिकम, ऐसा हम कहते हैं। उसका कारण है मन की शक्ति का कम या ज्यादा होना। तो ईश्वर की याद से हमारे मन की शक्ति बढ़ती है, और जैसे ही मन की शक्ति बढ़ती है वो परिस्थिति हमें छोटी महसूस होती है। और इसीलिए हम देखते हैं कि जितने भी आध्यात्मिक व्यक्ति संसार में हुए हैं, चाहे वो क्राइस्ट हुए, महात्मा बुद्ध हुए, महात्मा गांधी हुए, मदर टेरेसा हुई, सुकरात हुए, उनके जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आई, लेकिन बहुत सहज रीति से उन्होंने अपने जीवन में उसे पार किया, क्योंकि वो आध्यात्मिक बल उनके पास था। और ये भी देखा गया कि जब हम योग अभ्यास करते हैं तो योग अभ्यास से हमारे शरीर में रासायनिक परिवर्तन होते हैं। जैसे जब हम तनाव में होते हैं तो भी हमारे शरीर में रासायनिक परिवर्तन होते हैं, लेकिन वो हानिकारक हैं, वो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं। लेकिन योग से जो रसायन बनते हैं वो हमें स्वास्थ्य लाभ देते हैं, हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं स्ट्रेस के समय हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है, लेकिन योग के समय कम होती है। स्ट्रेस में ब्लड प्रेशर बढ़ता है, योग के समय कम होता है। स्ट्रेस में रेस्पिरेशन बढ़ता है, योग में कम होता है। स्ट्रेस में मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, योग में कम होता है। बैड कोलेस्ट्रॉल स्ट्रेस के समय बढ़ जाता है, लेकिन योग से कम होता है। तो ये सारे केमिकल्स जो हैं वो बैलेंस होने लगते हैं, हमारे सभी अंग एक संतुलन में काम करने लगते हैं, और हमारा तन भी स्वस्थ होता है। यानी पहले मन स्वस्थ होता है, फिर तन स्वस्थ होता है और इसीलिए योग को स्वास्थ्य से जोड़ा गया। आज वर्तमान समय में योग लोकप्रिय हो रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण योग से हम स्वस्थ होते हैं ऐसा हम समझते हैं और इसीलिए हम योग अभ्यास करना चाहते हैं। लेकिन योग से पहले हमारा तनाव कम होता है, मन शांत होता है, रिलैक्स होता है, फिर उसका प्रभाव हमारे तन पर आता है, यानी हमारे बॉडी की फिजियोलॉजी भी चेंज होने लगती है और हमारे जीवन में, चाहे वो पारिवारिक जीवन है, कार्य क्षेत्र में है या व्यक्तिगत, तीन बातें हमारे सामने आती हैं, रोल्स, रूटीन्स एंड रिलेशनशिप्स। हम सभी कोई ना कोई कार्य करते हैं और जो भी कार्य करते हैं उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। मानो हम अफसर हैं और सारा दिन हमें सबसे कार्य कराना होता है, कार्य कराते हैं हम, ऑफिशियल बने रहते हैं, लेकिन जब हम घर में आते हैं तब हमारा रोल चेंज हो जाता है। घर में तो अफसर नहीं है, लेकिन अगर हम अपने रोल से अपने आप को डिटैच नहीं कर पाते तो घर वालों को जो हमसे स्नेह चाहिए, अपनापन चाहिए, वो हम नहीं दे पाते। घर में आकर के भी हम कैसा व्यवहार करते हैं, जैसे ऑफिस में करते हैं, यानी ऑफिस का तनाव हम घर में लेकर के आ रहे हैं। कई बार अफसर नहीं है लेकिन वर्कर हैं, सारा दिन लोग हमसे काम कराते हैं, कभी हम लोगों का सुनते भी हैं, गुस्सा आता है लेकिन हम कह नहीं सकते, वो सब अंदर पीते हैं, और घर में आते हैं तो घर में आके बोल सकते हैं, बच्चों के सामने, पत्नी के सामने छोटी छोटी बात में गुस्सा करना। यहां भी क्या कर रहे हैं, जहां जैसा रोल है वैसे रोल में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाए, फिर ऑफिस का तनाव घर में है। कुछ लोग घर का तनाव ऑफिस में ले जाते हैं, लेकिन राजयोग में आप सीखते हैं हम जो करते हैं वो हम नहीं है। वी आर नॉट ह्यूमन डूइंग्स, वी आर ह्यूमन बीइंग्स। बीइंग्स बीइंग्स माना आत्मा है जो इस शरीर के द्वारा इस संसार में कर्म कर रही है। डॉक्टर हूं, प्रोफेसर हूं, इंजीनियर हूं, बिजनेसमैन हूं, ये सब हमारे कर्म हैं जो इस संसार में हमें रोल मिला है कार्य करने के लिए। तो यदि हम इसे सिर्फ रोल समझते हैं तो फिर अपने कार्य से डिटैच होना हमारे लिए आसान हो जाता है, क्योंकि मैं कार्य नहीं हूं लेकिन मैं कार्य से अलग एक आत्मा हूं जो शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है। तो ये अंतर हमारे जीवन में आने लगता है कि हम निमित्त भाव से वो कर्म करते हैं। एक बार एक स्थान पर रामलीला चल रही थी और वहां पर हनुमान का रोल प्ले करने वाला नहीं आया था, तो मैनेजर ने देखा कि बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई है, शुरू करवा देना चाहिए। तो उसने अपने एक वर्कर को बुलाया और उसको कहा कि देखो तुम हनुमान का ड्रेस पहनकर आओ, सामने रावण की दरबार लगी हुई होगी। तो वो आपसे एक सवाल पूछेगा, तुम कौन? तो आप कहना मैं श्री राम भक्त हनुमान, आपको इतना ही करना है फिर हम संभाल लेंगे। उसने कहा ठीक है, बेचारे ने कभी एक्टिंग नहीं की थी, तो वो आतोगे ड्रेस पहन करके। फिर जैसे ही उसने पब्लिक को देखा, फिर रावण का तो रोल कैसे होता है, बहुत जोर से शाउट करके वो कहता है, तो उसने ऐसे ही उसके ऊपर शाउट किया तुम कौन, वो बेचारा घबरा गया। उसने कहा मैं रामलाल रिक्शा वाला। तो यहां भी ऐसा होता है कि जब हम टेंशन में होते हैं तो हमें अपना रोल जो जैसा प्ले करना चाहिए वैसे हम नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं हमसे गलती हो जाती है। ऐसे ही रूटीन्स, तनाव कम महसूस करने के लिए हमारी दिनचर्या व्यवस्थित होनी चाहिए। हम सुबह से लेकर रात तक सभी व्यस्त रहते हैं, आज के समय में हमें काफी कार्य करना पड़ता है और जब हम थक कर शाम को घर लौटते हैं तो हम रिलैक्स होना चाहते हैं। रिलैक्स होने के लिए क्या करते हैं, टीवी खोलते हैं और न्यूज देखते हैं मानो, क्योंकि हम पूछेंगे तो बोलेंगे हम न्यूज देखते हैं। अच्छा, न्यूज देखते हैं तो क्या न्यूज आपके तनाव को कम कर देती है, बढ़ा देती है? क्योंकि ऐसी न्यूज होती है उसमें कि देखते ही आपका तनाव बढ़ने लगता है। और मानो आप स्पोर्ट्स देख रहे हैं, क्रिकेट देख रहे हैं, कुछ भी, तो जो आपकी मनपसंद टीम है वो जीत रही है तब तो आप खुश हैं, और अगर वो हार रही है तो उसके साथ साथ आप भी, आपका ब्लड प्रेशर भी घटता बढ़ता रहता है ना? और जो टीवी के सामने होते हैं, चलो बहनें भी हैं, बहनें सीरियल देखती हैं ज्यादातर, तो क्या सीरियल आपके तनाव को कम कर देते हैं? तो इसका मतलब टेलीविजन से हमारा तनाव कम नहीं होता है। और अगर आप टीवी के सामने बैठे हैं तो देर रात तक आप टेलीविजन के सामने होते हैं, और अगर देर से सोते हैं तो सुबह देर से उठ पाते हैं। कहा गया अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक ए पर्सन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, लेट टू बेड लेट टू राइज, हम इसका परिणाम समझ सकते हैं, वो परिणाम हमारे सामने आने लगता है। अगर हम समय से सोते हैं और समय से उठते हैं तो फिर हम अपने आप को समय दे पाते हैं। आपके पास सुबह का समय अपना होता है, आप व्यायाम कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, और उसके बाद अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रूप से शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर हम देर से उठते हैं, हमारे पास टाइम कम होता है, ऑफिस जाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, कम समय में ज्यादा काम करते हैं, दिन ही तनाव से शुरू होता है। फिर देखते हैं बहुत सारा काम है तो कई काम एक साथ ले लेते हैं, एक भी काम समय पर पूरा नहीं कर पाते हैं, जबकि एक काम जो हाथ में लिया है पहले उसको पूरा करें, उसके बाद फिर दूसरा काम हम शुरू करें। कुछ लोग इसके अपोजिट होते हैं, काम करना ही नहीं चाहते हैं, तो वो टाइम पास करते हैं, दोस्तों के साथ गपशप करेंगे या सिगरेट पिएंगे, चाय पिएंगे, और देखते हैं पूरा दिन हो गया लेकिन फिर भी काम नहीं हुआ है। तो अगर हमारी सही दिनचर्या है, व्यवस्थित दिनचर्या है, और हम अपनी चीजों को भी व्यवस्थित रखते हैं तो काफी हद तक हम अपना तनाव कम कर लेते हैं। संबंध, ये भी देखा गया कि चाहे हम परिवार में हैं या कार्य क्षेत्र में हैं, संबंध होते ही हैं, और यदि हमारे संबंध अच्छे और मधुर हैं तो वो हमारे तनाव को कम करते हैं, क्योंकि संबंधों में हम अपना सुख दुख बांटते हैं, और यदि हम अपने मन की बात शेयर कर लेते हैं तो दूसरों से हमें थोड़ी हिम्मत मिलती है, सहयोग मिलता है, वो हमें कोई समाधान देते हैं, और इस तरह से हमारा तनाव कम होता है। विदेशों में ये देखा गया कि कुछ लोग पेट्स रखते हैं, पेट्स माना पालतू जानवर, जैसे कुत्ता होता है या बिल्ली घर में पालते हैं, तो वहां 90% घरों में कोई ना कोई पेट्स होते हैं। तो वहां एक स्टडी की गई, देखा गया कि जो अपने पेट से बातें करते हैं उनको हार्ट की बीमारी नहीं होती है। तो फिर ये जानने की कोशिश की गई कि ऐसा क्यों है, तो उनको पूछा गया कि आप अपने पेट से क्यों बातें करते हैं, आपकी पत्नी है, आपके दोस्त हैं, उनसे बातें करिए। तो उन्होंने कहा कि ये जो पेट हैं ये चुपचाप सुनते हैं, ये कुछ रिएक्ट नहीं करते हैं, और इनका हमें नहीं सुनना पड़ता है, इसलिए हम अपने पेट से बातें करना ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन फिर भी किसी भी तरीके से जब उन्होंने अपने मन को खाली कर दिया तो उसका सकारात्मक प्रभाव उनके शरीर पर दिखाई दिया। तो हर इंसान अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहता है। अब भारत में तो पेट्स नहीं होते हैं, यहाँ ऑपोजिट है, वहां 90% घरों में पेट्स होते हैं, यहाँ 10% घरों में भी नहीं होते हैं, है ना? तो फिर मानो आपको कोई ऐसा कॉन्फिडेंशियल नहीं मिलता है जो आपके दिल की बात को समझे या सुने, तो हम अपने दिल की बातें भगवान से भी कर सकते हैं। आप यहाँ सीख रहे हैं राजयोग, तो राजयोग में हम सर्व संबंधों का अनुभव करते हुए अपने सब समस्याएं भगवान को दे सकते हैं, एंड ही इज वेरी साइलेंट एंड फेथफुल लिसनर। भगवान जो है वो बहुत शांति से हमारी बात सुनेगा, और कभी भी वो हमारी बात कहीं इधर उधर कहेगा भी नहीं। तो इसका प्रयोग हम अपने जीवन में अवश्य करें। हाँ, आप राजयोग सीख के जा रहे हैं यहाँ से, तो काफी हद तक आप अपना तनाव वैसे ही कम कर लेंगे। लेकिन फिर भी ये देखा जाता है कि संबंधों में कुछ नेगेटिव बातें कभी ना कभी आती हैं। मानो हम बहुत अपेक्षाएं रखते हैं, खासकर हमारे समीप संबंधों में हम बहुत अपेक्षा रखते हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, सोचते हैं मेरी पत्नी है इसको मेरे लिए सब कुछ करना ही चाहिए। रोज करते हैं तो ठीक है, किसी दिन भी कम ज्यादा हुआ तो नाराज, गुस्सा, तनाव में, मेरा बच्चा है, मेरा कहना नहीं मानता है, किसी दूसरे के बच्चे को मैंने कोई बात कही उसने मेरी बात नहीं मानी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो मेरा बच्चा नहीं है, पर जहां मेरापन है अगर उसने मेरी बात नहीं मानी, जिस पर हम अपना अधिकार समझते हैं उसने अगर मेरी बात नहीं मानी तो मुझे बहुत दुख होता है। लेकिन यहां हमें समझना होगा कि हर व्यक्ति एक स्वतंत्र व्यक्तित्व है और उसकी अपनी सोच है, उसकी अपनी भावनाएं हैं। हमें परिस्थितियों को उनके ढंग से भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। क्या हम हमेशा दूसरों की बात मानते हैं, जो उनसे अपेक्षा रखते हैं कि वो हमेशा हमारी बात माने? कभी आप उनकी माने, कभी वो आपकी माने। ऐसे आपसी समझ ये संबंधों में होनी चाहिए। और जो भी कर्तव्य हम एक दूसरे के प्रति पालन करते हैं वो निस्वार्थ भाव से करें। ऐसे नहीं कि मैंने इसके लिए किया इसलिए इसको मेरे लिए करना ही चाहिए। एक भाई थे, उनको हार्ट अटैक हुआ, तो उन्होंने कहा मुझे पता है कि मुझे हार्ट अटैक क्यों हुआ है। बचपन में ही मेरे माता पिता का देहांत हो गया, मेरे छोटे भाई बहनों को मैंने पालन किया, आज वो सब बहुत अच्छी स्थिति में हैं, अच्छा कमाते हैं। अब स्थिति ये है कि मुझे उनका सहयोग चाहिए, मुझे सहयोग देना तो दूर, वो मेरा एहसान भी नहीं मानते कि मैंने उनके लिए कुछ किया। मुझे बहुत दुख होता है और डॉक्टर कहता है आप सोचो मत, अगर आप सोचेंगे तो आपको दोबारा हार्ट अटैक हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए? अपेक्षा तो यही करते ना कि समय पर हमने इनके लिए किया, अब आज हमारा समय आया है तो किसको करना चाहिए? उनको अवश्य करना चाहिए। लेकिन यदि हम अपेक्षा रखते हैं और वो नहीं करते हैं, अगर वो करते हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर वो नहीं करते हैं और हम सोचते हैं तो उससे हमारा ही नुकसान होने वाला है। और इसीलिए गीता हमें ये सिखाती है कि निष्काम भाव से हमें अपना कर्तव्य करना है। वो हमारा कर्तव्य था, वो किया, वो श्रेष्ठ कर्म हमने किया, उस श्रेष्ठ कर्म का श्रेष्ठ फल हमारे साथ है। उस समय भगवान ने हमें शक्ति दी, आज भी हमें वो शक्ति देगा और हमें कोई मुश्किल नहीं होगी। फिर ये भी देखा गया कि कई बार संबंधों में जेलसी, हेट्रेड, एंगर, क्रिटिसिज्म, ईगो, ये सब नेगेटिव भावनाएं हैं जो आ जाती हैं। हम देखते हैं हमारे साथी हैं, हमारे संबंधी हैं, वो तो बहुत संपन्न हैं, समृद्ध हैं, जीवन में उन्नति कर रहे हैं, हम वही हैं, तो ईर्ष्या होने लगती है। और ईर्ष्या होती है तो क्या कहा गया है, चिंता चिता के समान है, तो ईर्ष्या भी अग्नि है जो मनुष्य को जलाती है। हम स्वयं का ही नुकसान करते हैं, उससे उनका नुकसान नहीं होता है। संसार में तीन तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो दूसरों को सुखी देख करके दुखी होते हैं, दूसरे होते हैं जो दूसरों को दुखी देख करके सुखी होते हैं, और तीसरे होते हैं जो दूसरों को दुखी देख करके दुखी होते हैं। तो ईर्ष्या माना, सुखी देख करके यदि हम दुखी होते हैं, किसी का सुख यदि हम नहीं देख सकते। कई बार लोग कहते हैं कि इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है लेकिन दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी है। तो हमें अपने आप को चेक करने की जरूरत है, कहीं हमारा स्वभाव ऐसा तो नहीं है, और यदि है तो हमें परिवर्तन करना है। यदि जीवन में हम उन्नति करना चाहते हैं तो हम अपनी योग्यताओं को बढ़ाएं, अपने गुणों को बढ़ाएं, हम भी जीवन में आगे बढ़ने लगेंगे। लेकिन दूसरों से तुलना करके, दूसरों से ईर्ष्या करके हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। और जहां तक क्रोध की बात है, हम सभी को गुस्सा भी आता है, जैसे तनाव सबको होता है, कम या ज्यादा गुस्सा भी सभी को आता है। और आपसी संबंधों में जहां हम गुस्सा करते हैं हम ऐसे शब्द बोलते हैं जो दूसरों को दुख पहुंचाते हैं। कहते हैं कि तलवार का घाव भर जाता है लेकिन जबान का घाव नहीं भर सकता। कहने वाला कई बार भूल जाता है लेकिन जो सुनता है वो शायद जीवन भर नहीं भूल पाता, और इसके कारण वो संबंधों में दूरी होती है, संबंध टूट तक जाते हैं कई बार सिर्फ ऐसे शब्दों के कारण जो हमने गुस्से में कहे होते हैं। तो जहां भी गुस्सा है उसे हमें कंट्रोल करने की जरूरत है। तो हम दो तरीके अपना सकते हैं। एक तरीका तो है कि हम उसे थोड़े समय के लिए पोस्टपोन कर दें। मानो किसी ने कोई बात कही, हमें गुस्सा आता है, तो हम सोचे हम इसे ये बात कहेंगे लेकिन एक घंटे के बाद कहेंगे। मानो उतना धैर्य नहीं है हमारे अंदर तो कम से कम 2 मिनट 5 मिनट के बाद ही सही, थोड़ा सा हम उसको पोस्टपोन कर दें। तो उतने समय में हमें ये महसूस हो जाता है, कई बार रियलाइज हो जाता है कि सारी गलती उनकी नहीं है, हमारी भी गलती है और हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। पर अगर लगता है नहीं इनकी गलती इनको बताना ही चाहिए, नहीं तो फिर ये दोबारा गलती करेंगे, लेकिन तब तक हमारा आवेश कम हो जाता है और हम वही बात शांति से कहते हैं। कोई भी बात जो शांति से कही जाती है, अच्छे शब्दों में कही जाती है, उसे लोग स्वीकार करते हैं, उसे समाधान होता है। लेकिन गुस्से में अगर हमने बात कही तो सामने वाले की गलती होगी ना, तो भी वो नहीं मानेंगे और ही सिद्ध करेंगे। गुस्सा गुस्से को जन्म देता है और हमारी समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो क्या करना चाहिए? एक बार पति पत्नी ऐसे ही दोनों का ही गुस्से वाला स्वभाव था। एक का गुस्से वाला हो और दूसरे का शांत हो तो चलता है, लेकिन दोनों का ही गुस्से वाला स्वभाव था। तो कोई भी बात होती थी तो दोनों बराबर ही लड़ते थे। तो भाई तो काम पर चले जाते थे और बहन घर में रहती थी तो बहुत अशांत रहती थी। तो एक दिन उसकी पड़ोसन आई, उसने कहा बहन जी हमारे घर में आज कथा है, आप कथा में आना। तो गई कथा सुनने के लिए और खास कही कि कम से कम मुझे शांति मिलेगी, मैं कथा सुनूंगी। तो कथा जो कर रहे थे वो कोई महात्मा जी गुरु जी थे। तो कथा पूरी होने के बाद वो उनके सामने गई और उनको अपनी समस्या बताई कि कहा हम दोनों को ही बहुत गुस्सा आता है, तो मैं चाहती हूँ किसी तरह हमारे घर में शांति हो जाए, आप कोई उपाय बता सकते हैं? तो उसने कहा बहन मैं बता सकता हूँ लेकिन शर्त है, अगर मैं जो कहूंगा वही आप करोगी तो ही मैं बताऊंगा, नहीं तो बताने का कोई परिणाम नहीं। तो उसने कहा मैं जानना ही चाहती हूँ, आप जो बताएंगे मैं करूंगी, मैं आपसे वादा करती हूँ। तो उन्होंने पानी की एक बॉटल मंगाई और उसको दिया, कहा कि देखो जब आपके पति गुस्सा करेंगे तो आप ये पानी मुंह में रखना, इसके कुछ घूंट मुंह में रखना, पीना नहीं है, और जब तक वो गुस्सा करते हैं तब तक पानी पूरा समय मुंह में रहेगा। अब वो समझ तो गई लेकिन क्योंकि पहले ही उन्होंने वादा करवा लिया था तो उसने बॉटल ले लिया और घर चली गई। अब घर में तो रोज की बात थी, कोई बात पे पति ने गुस्सा करना शुरू किया तो उसने अपने वादे के अनुसार पानी मुंह में रखा। अब बोलना तो चाहती थी लेकिन बोल नहीं सकती थी क्योंकि पानी मुंह में था। अब पति ने भी सोचा कि आज शांति कैसे है, रोज तो बराबर सुनाई पड़ता है। तो उन्होंने भी जानबूझ करके और गुस्सा किया क्योंकि उनको भी सहन नहीं हो रहा था कि ये शांत कैसे हैं। तो बहुत बोला लेकिन किसी भी कीमत पर उसने एक भी शब्द नहीं कहा क्योंकि उसके मुंह में पानी था। खैर वो दिन पूरा हुआ। दूसरे दिन फिर कोई बात हुई, फिर पति ने गुस्सा करना शुरू किया तो उसने फिर मुंह में पानी रख लिया। आज भी वो बिल्कुल नहीं बोल रही थी, शांत थी। तो उन्होंने देखा ये तो आज भी नहीं बोलती है, तो उनको आश्चर्य हुआ कि ये सचमुच क्या बदल गई है। फिर ट्राई करना शुरू किया कि चलो दो बार नहीं बोली, तीसरी बार बोलती कि नहीं बोलती, तो जानबूझ करके किसी ना किसी बात को लेकर के बोलना शुरू करते थे तो वो मुंह में पानी रख लेती थी और बोलती नहीं थी। तो ऐसे कितनी ही बार उन्होंने टेस्ट कर लिया उसको और जब उनको पूरा पक्का हो गया कि ये बदल ही गई है, सचमुच ये शांत हो गई है, तो अब उनका ध्यान अपनी तरफ गया कि मैं कुछ ज्यादा ही गुस्सा करता हूँ, छोटी छोटी बातों पर ज्यादा बोलता हूँ, मुझे भी इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो जैसे ही अपनी तरफ ध्यान देना शुरू किया गुस्सा कम होने लगा और कुछ दिनों में वो भी बिल्कुल जैसे शांत हो गए। तो ये बहन तो इतनी खुश हुई, वो गई उन गुरु जी के पास और उसको कहा कि मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं, सचमुच आपने मेरे नर्क जैसे घर को स्वर्ग बना दिया है, लेकिन वो पानी खत्म हो गया है। तो उन्होंने कहा बहन वो पानी कोई सिद्ध पानी नहीं था, वो पानी तो सिर्फ आपको सिखाने के लिए था कि जब आपके पति गुस्सा करते हैं उस समय आप शांत रह जाओ। आपने देखा कैसा परिणाम आपको मिला उसका, तो आप सदा ही शांत रहोगी तो सदा ही आपका घर स्वर्ग रहेगा। तो फिर कई भाई बहने कहते हैं कि बहन जी ये कहना बहुत आसान है, लेकिन सचमुच जब हमारे जीवन में ऐसे कोई गुस्सा करता है तो हम शांत नहीं रह सकते हैं। रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं? जो रह सकते हैं वो हाथ उठाएं। ये देखो मतलब जो रह सकते हैं इसका मतलब हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं और जैसे मैंने आपको बताया ये हमारी चॉइस है, किसी भी परिस्थिति में अगर हम न चाहें तो कोई हमें गुस्सा नहीं दिला सकता। अगर हमारा अपने ऊपर इतना कंट्रोल है तो ये अपने आप को हमें ट्रेनिंग देना है, अपने आप को हमें सिखाना है कि कोई कितना भी गुस्सा करे लेकिन उस समय के लिए तो हमें जरूर शांत रह जाना है। फिर बाद में अगर हमें उनकी बात बतानी है तो अवश्य कहें लेकिन शांति से कहें। अगर हम शांति से वो बात कहेंगे तो वो समझेंगे, गुस्से में ही हम कहेंगे तो उसके कभी भी अच्छे परिणाम मिलते ही नहीं है। और दूसरा तरीका है कि हम प्रतिदिन योग अभ्यास करें। जब हम योग अभ्यास करते हैं तो हमारे व्यक्तित्व में ही परिवर्तन आने लगता है, व्यक्तित्व ही शांत होने लगता है और हमें गुस्सा ही कम आता है, और अगर आता भी है तो हम आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं। और एक आखिरी, हम 3 A's का फार्मूला अपनाएं अपने जीवन में, एक्सेप्ट, ऑल्टर एंड अवॉइड। जैसे हमने कहा कि सभी बातें हमारे जीवन में कंट्रोल में नहीं होती हैं, कई समस्याएं ऐसी होती हैं जिन्हें हमें जीवन में स्वीकार करना पड़ता है। मानो हमारे परिवार में ऐसे सदस्य हैं जिनका स्वभाव हमारे अनुकूल नहीं है, हम जैसा चाहते हैं वैसा वो नहीं करते हैं और उनके कारण हमेशा हमें तनाव होता है। आप बहुत बार समझा भी चुके हैं लेकिन फिर भी उनका स्वभाव नहीं बदलता है, तो हमें उनको स्वीकार करना पड़ेगा। वो जो भी हैं, जैसे भी हैं, उन्हें हम समझ कर चलें तो हमें तनाव नहीं होगा। हम किसी को नहीं बदल सकते, किसी के भी दूसरे का जीवन हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। हम अपने आप को अवश्य परिवर्तन कर सकते हैं लेकिन दूसरों को हम परिवर्तन नहीं कर सकते। फिर कई बार हम देखते हैं प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, अचानक आ जाती हैं, जैसे उत्तराखंड की घटना हुई या फिलीपींस में तूफान आया या उड़ीसा में तूफान आया, कहीं ना कहीं ऐसा होता है। और कभी हमारे संबंधी या हमारा ही कुछ संपत्ति का बहुत नुकसान हो जाता है, हमारे अपने उसमें चले जाते हैं, तो वो जो होनी है उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो जो हो गया उसको हम स्वीकार करें और अब आगे भविष्य में क्या करना है उसका समाधान हम सोचें तो हमें तनाव कम से कम होगा या नहीं होगा। ऐसे ही जहां हम परिवर्तन ला सकते हैं, खासकर हमारा स्वभाव, उसमें हम हमेशा परिवर्तन ला सकते हैं। मुझे पता है कि मुझे ज्यादा गुस्सा आता है, मेरी बहुत सेंसिटिव नेचर है, मुझे जल्दी फीलिंग आ जाती है या मुझे ईर्ष्या होती है या मुझ में ईगो है, अभिमान आता है, तो हम हमेशा अपने आप को परिवर्तन कर सकते हैं। भले उसके लिए हमें थोड़ा समय लगेगा, उसके लिए हमें थोड़ा सा अपने ऊपर अभ्यास भी करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, लेकिन अपने आप में हम परिवर्तन लाएंगे तो हमारी समस्याएं अपने आप कम हो जाएंगी। और कुछ बातों को जीवन में हमें अवॉइड करना पड़ता है, जिन बातों से हमारा कोई मतलब नहीं, उसे हम सुने ही नहीं, और अगर सुनना भी पड़ता है तो सुनते हुए भी जैसे हमने नहीं सुना, यानी उसका प्रभाव हमारे पर ना पड़े। मानो कुछ ऐसे समाचार हैं जिसका हमारे से कोई मतलब नहीं, अब संसार के दूसरे कोने में क्या हो रहा है आज 1 मिनट में वो हमारे ड्राइंग रूम में होता है, लेकिन हम उसके लिए कुछ कर तो नहीं सकते हैं। तो या तो हम सुने ही नहीं ऐसे समाचार, और अगर सुन भी रहे हैं तो उनसे प्रभावित नहीं हो। तो कुछ बातों को हम अवॉइड करें, जहां हम परिवर्तन ला सकते हैं परिवर्तन कर लें, जिन बातों में हम कुछ नहीं कर सकते उन्हें हम स्वीकार कर लें। तो इस तरह से यदि हम प्रतिदिन अपने लिए समय निकालते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, अपने को परिस्थितियों में सकारात्मक रखते हैं, उसके लिए राजयोग का अभ्यास करते हैं जिससे हमें सकारात्मक रहने में मदद मिलती है, तो हम काफी हद तक तनाव मुक्त, प्रसन्न और स्वस्थ जीवन का अनुभव कर सकते हैं। ओम शांति।